معزز سامعین حضرات، تسلیم عارف اور ان کے ہم نواؤں کی یہ کوشش رہتی ہے کہ اسلامی نئے سال یعنی محرم کے اس مہینے میں ہر سال آپ کو کچھ نہ کچھ نیا سنائیں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلسل پچھلے 3 سالوں سے آپ حضرات شہادت امام حسین والیوم 1، دوسری بار قاتلان حسین کا انجام یعنی والیوم 2، اور پچھلی مرتبہ والیوم 3 صغرا کا خط آپ حضرات کی نظر کے سامنے سے گزرا ہے اور آپ نے سنا ہے۔ لہذا ایک ضروری بات جو رہ گئی ہے وہ ہے بنائے کربلا، یعنی کربلا میں یہ جو خونریزی ہوئی، حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی جو شہادت ہوئی، اس کی بنا کیا تھی اور اس کی بنیاد کہاں سے پڑی۔ اس بار ہم آپ کو شہادت والیوم 4 یعنی بنائے کربلا سنانے جا رہے ہیں۔ حضرات اس بات کو غور سے سنیے کہ حضرت عبد مناف جو قریشی خاندان سے تھے، جنہیں سب لوگ سردار مکہ مانتے تھے، جب ان کے 2 بیٹے پیدا ہوئے جن کی پیٹ جڑواں تھی اور ان کو تلوار سے علیحدہ کیا گیا تھا، ایک بیٹے کا نام امیہ اور دوسرے کا نام ہاشم رکھا گیا۔ ابو سفیان، معاویہ، یزید یہ سب امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے خاندان کا تعلق امیہ سے ہے۔ ہمارے حضور حضرت امام حسن، حضرت امام حسین یہ سب اولاد ہاشم میں ہیں۔ تو جب ان کے تلوار سے 2 علیحدہ علیحدہ ٹکڑے کیے گئے تھے، ان دونوں بھائیوں کو علیحدہ علیحدہ کیا گیا تھا، تو اسی وقت یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ ان دونوں خاندانوں میں ہمیشہ جھگڑا رہے گا، اور آگے کیا کیا ہوتا ہے آئیے میں آپ کو بنائے کربلا سنا رہا ہوں، جس کے شاعر ہیں ہندوستان کے عظیم شاعر محترم شوق وزیر گنجوی، میوزک کے فرائض انجام دے رہے ہیں آلوین براؤن، آواز ہے تسلیم عارف اور ان کے ہم نواؤں کی، اور یہ پیشکش ہے سپر کیسٹ انڈسٹریز اور گلشن کمار کی۔ لیجئے سماعت فرمائیے بنائے کربلا۔ بدی کی راہ سے ہرگز کبھی منزل نہیں ملتی، اگر بنیاد حق پر ہے تو وہ ہرگز نہیں ہلتی۔ خدا کی راہ میں مٹ کر ہمیشہ چین ملتا ہے، کبھی شیطان جنت میں کلی دل کی نہیں کھلتی۔
کبھی شیطانی جنت میں کلی دل کی نہیں کھلتی، یہ حقیقت ہے۔ اسی لیے تو شوق وزیر گنجوی کہتے ہیں،
سنو اے شوق ہے یہ واقعہ صبر و صداقت کا،
سنو اے شوق ہے یہ واقعہ صبر و صداقت کا۔
خلاصہ پیش کرتا ہوں تواریخ شہادت کا،
خلاصہ پیش کرتا ہوں تواریخ شہادت کا، خلاصہ پیش کرتا ہوں تواریخ شہادت کا۔
سنو اے شوق ہے یہ واقعہ صبر و صداقت کا،
اے شوق ہے یہ واقعہ صبر و صداقت کا،
سنو اے شوق ہے یہ واقعہ صبر و صداقت کا۔
پیش کرتا ہوں تواریخ شہادت کا،
خلاصہ پیش کرتا ہوں تواریخ شہادت کا، خلاصہ پیش کرتا ہوں تواریخ شہادت کا۔
फरमाइएगा।
बड़ी पुरदर्द है ये दास्ताने करबला, सुन लो जिगर थामो अकीदत से बयाने करबला, सुन लो ये खूनरेजी हुई बाहम, सुनो इसकी वजह क्या है, करो मालूम लो सुन लो बिनाए करबला क्या है। सुनो किस किसने आले मुस्तफा पर जुल्म ढाए हैं, वो जालिम कौन था किसने ये सब फितने उठाए हैं। कुरैशी खानदान में थे बशर अब दे मुनाफे से, उन्हें सरदार मक्का मानते थे सब अरब वाले, पिसर पैदा हुए तो उनके जिनकी पुश्त जुड़वा थी, सभी कहते थे रह पाएगी कैसे जिंदगी इनकी, ये सोचा के जुदा कर दे तो शायद एक बच जाए, गरज तलवार से दोनों अलहदा कर दिए बेटे, खुदा की शान दोनों की रही फिर जिंदगी कायम। उमैया नाम एक का दूसरे का रख दिया हाशम, अबू सुफिया मुआविया यजीद मुवी नसल के हैं, रसूल अल्लाह अली हसनैन है औलादे हाशम में, किए तलवार से जुड़वा अलग उसका असर आया, चली तलवार दोनों की नस्ल में और रहा झगड़ा, मिली औलादे हाशम के लिए मक्के की सरदारी, रही इस वास्ते सब उम्मीदों के दिल में बेजारी।
रसूल अल्लाह ने अपनी रिसालत के करीने से, रसूल अल्लाह ने अपनी रिसालत के करीने से
अदावत और कदूरत दूर कर दी सबके सीने से, अदावत और कदूरत दूर कर दी सबके सीने से, अदावत और कदूरत दूर कर दी सबके सीने से।
सबको सबक ऐसा हुए आपस में भाई भाई, सबको दीन प्यारा था, मगर इब्ने हकम मरवान जो चालाक इंसान था, बदी थी उसकी नियत में बजाहिर वो मुसलमान था, उमैया खानदा से था ताल्लुक उस मुनाफिक का, असर बाकी था दिल में फितना गर के दौरे साबित का, अदावत रखता था हर वक्त वो हाशम कबीले से, नए फितने उठाता था वो शैतान के वसीले से, शरारत हद से ज्यादा जब उठाई उस सितमगर ने, अरब से तब उसे बाहर किया महबूबे दावर ने, जमाना जब रहा सिद्दीक अकबर की खिलाफत का, नहीं मौका मिला उसको अरब में फिर सुकूनत का, उमर फारूक का दौरे खिला
खिलाफत जिस घड़ी आया तो वो मरवान जालिम खौफे जां से और घबराया। अरब से दूर जाकर खुद को पोशीदा किया उसने, शरारत छोड़ दी अपने लिए सीधा किया उसने। उमर ने यूं दिया अंजाम हर कारे खिलाफत को, मिली वुसअत नुमाया अपनी इस्लामी हुकूमत को। फतह चारों तरफ हासिल हुई इस्लामी लश्कर को, कबूल ईरान और रूमा ने किया दीने पैगंबर को। खिलाफत दस बरस करके जहां से कूच फरमाया,
खिलाफत दस बरस करके जहां से कूच फरमाया, खिलाफत दस बरस करके जहां से कूच
सुना। इब्ने हकम मरवान जो बहुत चालाक इंसान था, उसकी नियत में वही बदी थी शुरू से, और वो हाशिम खानदान से बहुत जलता था। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में, फिर हजरत उमर फारूक के जमाने में वो दाखिल नहीं हो सका। लेकिन उसके बाद जब हजरत उस्मान गनी का दौरे खिलाफत आया तो क्या हुआ, जरा समाज फरमाइए। उमर फारूक की रहलत की जब हर सू खबर पहुंची, हुई मरवान को बेहद खुशी घर को हुआ राही। अरब में आके फिर उसने शरारत की बिना डाली, खिलाफत जब मिली उस्मान को तो पाई खुशहाली। वो रिश्तेदार था उस्मान का जब बन गया मुंशी, अंगूठी उसने गुम कर दी शहनशाहे दो आलम की। खिलाफत की किसी तहरीर पर मोहर उससे लगती थी, उसे गुम करके उसने दूसरी फिर और बनवा ली। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो अंगूठी थी जो हर खलीफा को मिली, और खिलाफत की मोहर उसी अंगूठी से लगती थी, मरवान ने क्या किया, इस अंगूठी को चुरा कर उसी जैसी एक दूसरी अंगूठी बनवाई, और फिर उसके बाद क्या हुआ सुनेगा। हुई अब हर तरह मरवान को आजादियां हासिल, किए माजूल उसने जितने भी थे हाशमी आमिल। उठाए ऐसे फितने के शहादत पाई उस्माने, अली और मुआविया के दरमिया जंग उसने करवाई। हुई जंगे जमल कुछ आग उसने ऐसी भड़काई, तिफरका ऐसा डाला उसने सारी कौम के अंदर, मुसलमानों में खूरेजी हुई उसकी शरारत पर। हुए मस्जिद में दाखिल जब सहर को हजरते हैदर, तो छुप कर वार एक जालिम ने फौरन कर दिया उन पर लगी तलवार सर पर जख्म काफी हो गया गहरा अली शेरे खुदा के सर से निकली खून की धारा
हुई तकलीफ इतनी गैर हालत हो गई उनकी
हुई तकलीफ इतनी गैर हालत हो गई उनकी
हुई तकलीफ इतनी गैर हालत हो गई उनकी
तो फिर 21 रमजान को शहादत हो गई उनकी मुसलमानों में खूनरेजी बचा देगा
حضرت امام حسن نے جب دیکھا کہ اب اس میں قوم کی ملت کی بربادی ہے, جنگ ٹالنے کے لحاظ سے آپ نے خلافت سے استعفیٰ دے دیا اور حضرت امیر معاویہ خلیفہ بن گئے. جب حضرت امام حسن خلافت سے سبکدوش ہو گئے تو پھر اس کے بعد اس مروان نے کیا کیا, سماعت فرمائیے گا.
ملی حضرت حسن کو جب خلافت سے سبکدوشی تو سر پر آ گئی مروان ظالم کی ستم کوشی. دیا مروان نے کٹنی کو لالچ مال کا زر کا, کہا تو خاتمہ کر دے حسن سبتے پیمبر کا. حسن کی بیوی اسما کو بتانا رازداری سے, حسن کے گھر میں تم محروم ہو بادے بہاری سے. یزید بن معاویہ سے تم انعام پاؤ گی, بنو گی ان کی ملکہ زندگی بھر عیش اٹھاؤ گی. وہ تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں, مجھ کو بھیجا ہے تمہیں ملکہ بنانے کی, دلی ان کی تمنا ہے. سنو تم بات میری, زہر دے دو اپنے شوہر کو, بنو ملکہ رہو محلوں میں چھوڑو اپنے اس گھر کو. گئی کٹنی حسن کے گھر, دیا پیغام بیوی کو, بتایا اس نے سب آغاز اور انجام بیوی کو. حسن کی بیوی اسما نے جو دیکھا خواب محلوں کا, حسن کو زہر دینے کا بنایا اس نے منصوبہ. اسونیا نے اسما کو بڑی حکمت سے بہکایا, وہ اپنا کام کر کے آ گئی تو مال و زر پایا. ملا کر زہر خرموں میں دیا اسما نے شوہر کو, بڑی تکلیف پہنچی زہر سے سبت پیمبر کو.
گئے نانا کے روزے پر ملاموں ان کی تربت سے,
گئے نانا کے روزے پر ملاموں ان کی تربت سے,
گئے نانا کے روزے پر ملاموں ان کی تربت سے.
شفا پائی حسن ابن علی نے رب کی رحمت سے,
شفا پائی
کرنا چاہتا ہے اور تم اپنے شوہر کو زہر دے دو. تو اس کٹنی نے کیا کام کیا, بہکایا جا کر حضرت اسما لالچ میں آ گئی محلوں کے, انہوں نے حضرت امام حسن کو زہر دیا. لیکن آپ اپنے نانا جان کے روزے پر جا کر ان کی تربت سے اپنا منہ ملتے ہیں, پروردگار عالم ان کو شفا بخشتا ہے. لیکن اسی طریقے سے چار بار ان کو زہر دیا گیا, لیکن آخری بار جو زہر دیا گیا تھا وہ یزید کے یہاں سے آیا تھا, اور وہ کیسا زہر تھا اور اس کے پینے سے کیا ہوا, سماعت فرمائیے.
حسن کے ساتھ یہ دھوکہ کیا ہے بار بار اس نے, کیا چوتھا
ही दफा फिर जहर दे कर बेकरार सुने। तबीयत थी अलील उनकी बवक्ते शब थे बिस्तर पर, लगी जब प्यास तो पानी सुराही से पिया उठकर। पड़ा था जहर उसमें तेज जो इस माने डाला था, जो मिन जानिब यजीद सुमा को खुद मरवान ने भेजा। पिया पानी तो एकदम चीख निकली मुंह से शब्बर के, कलेजा थाम कर बेचैन होके वो बहुत तड़पे। हुसैन बुने अली और बहन जैनब दौड़ कर आए, हसन की देख कर हालत सभी घर वाले घबराए। हुई जब कह तो सब टुकड़े जिगर के आ गए बाहर, गिने टुकड़े तो उन टुकड़ों की थी तेदाद सब 70। हसन का देख कर ये हाल सबने होश थे खोए। हुसैन बुने अली एकदम लिपट कर भाई से रोए, कहा क्यों बेकसी के हाल में रुख मोड़े जाते हो, हमें किसके सहारे इस जहां में छोड़े जाते हो। हमारा कौन होगा हम नवा जब तुम नहीं होगे, हमें अब कौन देगा मशवरा जब तुम नहीं होगे। मेरे भाई जमाना जिस घड़ी हमको सताएगा, हमारी सरपरस्ती के लिए फिर कौन आएगा।
किसने आपको किसने सताया है,
या है जहर किसने आपको किसने सताया है, या है जहर किसने आपको किसने सताया है।
हमें ये तो बताएं आप किसने जुल्म उठाया है,
हमें ये तो बताएं आप किसने जुल्म उठाया है,
हमें ये तो बताएं आप किसने जुल्म उठाया है।
दिया है जहर किसने आपको किसने सताया है,
दिया है जहर किसने आपको किसने सताया है, दिया है जहर किसने आपको किसने सताया है।
हसन इब्ने अली ने ऐ मेरे भाई, बताऊं नाम किसका सब्र ही अब कीजिए भाई। खुदा इंसाफ करने वाला है इंसाफ कर देगा, मेरा बदला मेरे दुश्मन से बस अल्लाह ले लेगा। किसी पर शक न करना मत किसी को भी सजा देना, मेरे भाई जहां को सब्र के मानी बता देना। हुसैन अब तुम हो तन्हा दुश्मनी पर ये जमाना है, बाहर सूरत तुम्हें अब दीन की कश्ती बचाना है। सुपुर्दे रब किया तुमको मेरे भाई ना घबराओ, यही तकदीर में लिखा था भाई सबको समझाओ। मिला है शुक्र का हमको सबक महबूबे दावर से, मिली है सब्र की दौलत हमें दामाने मादर से। अली शेरे खुदा की शान दुनिया को दिखा देना के जोरे हाशमी से कुफर की चूले हिला देना। मुझे गम है कि मैं तुमको भंवर में छोड़े जाता हूँ, मुझे मालूम है मैं दिल तुम्हारा तोड़े जाता हूँ। करोगे रहबरी और सरपरस्ती तुम ही सब घर की, अली अकबर की और कासिम की सब आले पैगंबर की। मुझे मालूम है नाना ने मुस्तकबिल बताया है, निहायत राजदारी से मुझे एक दिन सुनाया है।
कर दीन तुम जन्नत में मेरे पास आओगे,
बचा कर दीन तुम जन्नत में मेरे पास आओगे, बचा कर दीन तुम जन्नत में मेरे पास आओगे।
से सुन ऐ मेरी माँ जाई, हमेशा को बिछड़ता है मेरी ज़ैनब तेरा भाई। मेरी प्यारी बहन मेरी खताएं दर गुजर करना, निहायत सब्र से अब जिंदगी अपनी बसर करना। तेरा भाई हसन अब इस जहां से जाने वाला है, जरा सुन गौर से एक वक्त ऐसा आने वाला है। हुसैन बुने अली पे होगी उर्श एक जमाने की, बनेगी सल्तनत दुश्मन मोहम्मद के घराने की। यजीद अब अपनी ताकत से सदाकत को मिटाएगा, मेरे भाई पे ज़ैनब बहन ऐसा वक्त आएगा के पांव के तले की होगी दुश्मन एक चींटी भी। बाहर सूरत तू करना सरपरस्ती अपने भाई की, समझदारी है तुझ में नाना से तालीम पाई है। अली की लाडली है फातिमा जहरा की जाई है, गले मिल मिल के ज़ैनब जब हसन भाई से रोती थी तो उनको देख कर सैदानियां सब होश खोती थी। बुलाकर फिर हसन ने अपने कासिम को ये फरमाया, तुम्हारे सर पे मैं अब छोड़ता हूँ भाई का साया, चचा का साथ ऐ नूरे नजर तुम उम्र भर देना। जरूरत आ पड़े तो जान भी कुर्बान कर देना।
कहा से
भाइयों की आए अब जोड़ी पिछड़ती है।
इमाम हसन की शहादत किस तरह होती है, इस वक्त आप सुन रहे हैं हजरत इमाम हुसैन अली मकाम की शहादत का वाकया, तो आप सुन ही चुके हैं, लेकिन इस वक्त हजरत इमाम हसन की शहादत आप समाप्त फरमा रहे हैं, समाप्त कीजिएगा आगे।
हसन ने फिर बुला कर तखलिए में बीवी इसमा को, कहा तूने पिलाया जहर जो फरजंदे जहरा को, तुझे अब तेरी मंजिल जिंदगी भर मिलना पाएगी, कयामत में खुदा के सामने क्या मुंह दिखाएगी, हुई गुमराह तू लालच में ख्वाबे ऐशो इशरत से, मगर गुजरेगी तेरी जिंदगी दुनिया में जिल्लत से, यजीद अब तुझको ठुकराएगा देखेगा हिकारत से, तेरा पुराना होगा मुद्दा मेरी शहादत से, तेरे इस जुल्म से जालिम ज़मीं की हिल गई छाती, नजर के सामने से जा तेरी सूरत नहीं भाती, ये सुनकर हट गई सुमा सभी घर वाले फिर आए, सभी छोटे बड़ों ने रंजो गम से अश्क बरसाए, कहा भाई से मेरी मौत पर तुम सब्र कर लेना, मेरे कासिम की अपनी कुबरा से तुम शादी कर देना, थे उस दम गोद में शब्बीर की बेचैन थे शब्बर, मदीने वाले घर में आ रहे थे ये खबर सुनकर, वो दहने पाक जिसको चूमते थे मुस्तफा प्यारे, हुआ था सब्ज रंगे सुम्मे कातिल जहर के मारे, कलेजा कट गया और खून खारिज हो गया सारा, बदन सब सब्ज रंग का हो गया फरजंदे जहरा का, बहुत तकलीफ थी था में हुए थे कल्बे मुजतर को, सभी थे अश्क अफशां देख कर सिबते पयंबर को, सुकून हासिल हुआ एकदम तसल्ली सी नजर आई, फिर आंखें बंद कर ली उनके चेहरे पर खुशी छाई,
तसव्वुर में था उनके उस घड़ी जलवा
से जा मिले पढ़कर हसन कलमा मोहम्मद का,
से जा मिले पढ़कर हसन कलमा मोहम्मद का, से जा मिले पढ़कर हसन कलमा मोहम्मद का।
हजरत इमाम हसन की शहादत हो जाती है, इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन। जब हजरत इमाम हसन की शहादत हुई, उसके बाद हजरत अमीर मुआविया जो उस वक्त खलीफा थे बीमार हुए और उन्होंने अपने बेटे यजीद को बुलाकर क्या समझाया, मुलाहिज़ा फरमाइए।
हुए बीमार मुल्के शाम में हजरत मुआविया, यकीन उनको हुआ अब वक्त मेरा आखिरी आया। यजीद अपने पिसर को पास बुलवा कर ये समझाया, कुराने पाक और इस्लाम के कानून पर चलना। खलीफा अबू बकर ने जिस तरह बेटे खिलाफत की, उमर फारूक ने जिस तरह से अपनी अदालत की, उसी सूरत से तू अपनी हुकूमत को चलाएगा। शरीयत पर मोहम्मद की अमल करके दिखाएगा, खुदा के हुक्म से तू कभी मत मोड़ना बेटा। खिलाफे शरा जो आदत है उसको छोड़ना बेटा। जवाब सुने दिया तुर्शी से बस कुरान काफी है, खिलाफत से किसी की क्या गरज ये मेरी मर्जी है। ये सुनकर मुआविया को दुख हुआ, फौरन ये फरमाया, मुझे लगता है तू आले नबी पर जुल्म ढाएगा। यजीद उठ कर गया बोला न कुछ भी बाप से अपने, बड़ी हैरत हुई वालिद रहे अफसोस ही करते। शिकारी साथ लेकर चल दिया और बाप को छोड़ा, गया सहरा की जानिब तेज दौड़ाता हुआ घोड़ा। गए अफसोस करते मुआविया इस तारे पानी से, यजीद अब और भी पेश आया अपनी बदगुमानी से। अपने नफ्स का ताबे था, उसको जो में ताकत था।
जहां से कूच जब फरमा गए हजरत मुआविया, बिसर को राज सब समझा गए हजरत मुआविया। यजीद बुने मुआविया ने अपनी शाने नुखवत में, खिलाफत को बदल डाला विरासत की हुकूमत में। हुकूमत के नशे में हो गया उमराह वो ऐसा, शरीयत के उसूलों की कोई परवाह ना करता था। बिगाड़ा में कशी ने उसको वो ओबाश बन बैठा, उसे असमत दरी अच्छी लगी अय्याश बन बैठा। अरब के सारे सूबों में नए अहकाम भिजवाए, बड़ी सख्ती से मेरे हुक्म को नाफिज किया जाए। मेरी बैयत करा के सबसे लो अहदे वफादारी, पाऊं। जबरदस्ती ले बैत हाकिमों को हुक्म देता हूं, बगावत जो करे कोई तो उसको कत्ल कर डालो। करो फौरन अमल इस पर मेरा ये हुक्म मत टालो। हुसैन बुने अली अब्दुल्ला बिन बूबकर को देखो, जुबैर हजरत उमर के बेटे, इन चारों से बैत लो। कोई गफलत ना होने पाए, सब कुछ एकदम कर दो। तामुल जो करे कोई तो उसका सर कलम कर दो।
उसने इज्जत से जनाबे इब्ने हैदर को बुलाया,
गवर्नर उस घड़ी शहरे मदीना के निगहबां थे, वलीद इसमें गिरामी था, वो अच्छे नेक इंसान थे। हुसैन बुने अली जिस दम गवर्नर के यहां पहुंचे, गवर्नर ने उन्हें दरबार में बिठलाया इज्जत से। यजीदी हुक्मनामा फिर सुनाया इब्ने हैदर को, दिया शब्बीर ने फिर ये जवाब उस दम गवर्नर को। यजीदी सल्तनत के पहले मैं हालात देखूंगा, करेंगे और सब बैत तो उसके बाद सोचूंगा। ये फरमा करो हुसैन बुने अली घर को चले आए, जो अपने खैर ख्वाह थे उनको सब हालात बतलाए। गवर्नर के यहाँ दरबार में मरवान बैठा था, हुसैन बुने अली निकले तो वो मरदूद ये बोला, हुसैन बुने अली को किस लिए जाने दिया तूने, जबरदस्ती नहीं बैत कराई क्या किया तुमने। कराते उनसे बैत या गिरफ्तार उनको कर लेते, अगर आमादा होते लड़ने पर तो उनका सर लेते। वलीद उस वक्त आए तैश में बोले के तुम जाओ, अगर हिम्मत है तो रस्ते में होंगे तुम पकड़ लाओ।
मैं गुस्ताखी हुसैन इब्ने अली से कर नहीं सकता,
गुस्ताखी हुसैन इब्ने अली से कर नहीं सकता,
मैं गुस्ताखी हुसैन इब्ने अली से कर नहीं सकता।
नबी के घर का बच्चा भी किसी से डर नहीं सकता,
مروان ظالم کچھ نہیں بولا یزید بنی معاویہ سے جا کر زہر یہ گھولا شکایت کی ولید اس دم مدینے کا گورنر ہے محمد کے گھرانے کا اثر کچھ اس کے اوپر ہے کبھی بیعت کرا سکتا نہیں سب سے مدینے میں مخالف لوگوں کی الفت بھری ہے اس کے سینے میں گورنر کو کیا معزول دربار خلافت سے کیا مروان نے یہ کام زہریلی عداوت سے خلیفہ دوم اول کے پسر بھی تھے مدینے میں وہیں ابن زبیر سدم تھے غم تھا ان کے سینے میں مدینے سے وہ تینوں رات میں مل کر چلے باہم مدینہ چھوڑ کر جانے کا ان سب کے لیے تھا غم رہے مکے میں جا کر اور یزیدی حکم ٹھکرایا لگے ابن زبیر اعلان کرنے خود خلافت کا حسین ابن علی حاضر ہوئے نانا کے روضے پر کہا رو رو کے نانا آج ہم سے چھوٹتا ہے گھر حکومت آ گئی ہے ظالموں جابر کے ہاتھوں میں نہ دوں گا ہاتھ اپنا فاسق و فاجر کے ہاتھوں میں مدد فرمائیے کہ امتحان سخت ہے میرا زمانہ میرا دشمن اور نازک وقت ہے میرا
مدینے سے جدا جس وقت اہل بیت ہوتے تھے
مدینے پر اداسی تھی درو دیوار روتے تھے
مقام کو جب مدینے میں زیادہ پریشان کیا جاتا ہے تو آپ فیصلہ کرتے ہیں مدینے سے مکہ جانے کا آپ اپنے نانا کے روضے پر سلامی دینے کے بعد مکے کی طرف چل دیتے ہیں کئی دن کا یہ سفر طے ہوتا ہے اور جب آپ کے آنے کی خبر مکے والوں کو ملتی ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں لیکن ادھر مروان یزیدی فوج لے کر آ جاتا ہے لیکن حضرت عبداللہ نے ایک لشکر تیار کیا بڑی گھمسان کی لڑائی ہوئی اور حضرت زبیر بڑی بہادری سے لڑتے ہیں سبھی اسلام کے غازی یزیدی فوج کو کھدیڑ دیتے ہیں یزیدی فوج کے کافی سپاہی اس جنگ میں کام میں آتے ہیں اور جو باقی رہ گئے تھے وہ جان بچا کر شام کو بھاگ جاتے ہیں حسین ابن علی کو ابھی کچھ روز ہی ہوئے تھے مکے میں آئے ہوئے تو کوفہ والوں نے یہ خبر بھیجی کہ اے حسین ابن علی ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں آپ یہاں تشریف لے آئیے حضرت امام علی مقام کے پاس اسی طریقے سے جب 150 خط آتے ہیں کوفے والوں کے تو آپ اپنے بھائی مسلم کو وہاں بھیجتے ہیں حضرات اس وقت آپ بنائے کربلا شہادت ولیم 4 کا آخری بند سننے جا رہے ہیں انشاءاللہ اس کے فوراً ہی بعد یعنی اگلے مہینے میں ہم آپ کو حضرت امام حسین کے سر مبارک کا واقعہ اور شیریں کا واقعہ پیش کریں گے लीजिए ये आखिरी बंद समाप्त फरमाइए और इंतजार कीजिएगा अगली कैसेट का।
कहा लब्बैक सबने हजरते मुस्लिम की बातों पर, हजारों लोग बैत कर चुके मुस्लिम के हाथों पर, खबर आई है मुस्लिम की यहाँ माहौल अच्छा है, खतों में जो भी लिखा था वो उनका कौल सच्चा है, हुसैन अपने बिरादर की खबर सुनकर हुए शादा, सफर करने का चुपके चुपके सारा कर लिया सामा, इरादा कर लिया जब आपने कूफा में जाने का, तो फिर मक्के के लोगों ने उन्हें आ आके समझाया, कहा ये कूफा वाले एक दिन तुमको दगा देंगे, कोई मुश्किल पड़ी तो अहद वो अपना भुला देंगे, तुम्हारे बाप और भाई को धोखा दे चुके हैं वो, उन्हें कूफा बुला कर जान उनकी ले चुके हैं वो, खिलाफत आप मक्के की करें कूफा नहीं जाएं, इतात आपकी मंजूर है कुछ गौर फरमाएं।
लेकिन हुसैन इब्ने अली बोले, समझ में कुछ नहीं आता, मुझे जानो जाने दो, मेरा फर्ज कूफे में बुलाता है। कहा सबने, अगर जाना ही है तो ऐसा फरमाएं कि बच्चों औरतों को साथ में हरगिज ना ले जाएं। कहा ये आपने, कुछ भी ना होगा, क्यों परेशान हो, बचाने दीन को जाता हूं, तुम क्यों अश्क अफशां हो। बिलाखिर क्या होता है,
बिलाखिर हो गई जब आपके जाने की तैयारी, तो मक्के वालों की आंखों से आंसू हो गए जारी,
हर कुनौरों के कहता था कलेजा मुंह को आता है, हर कुनौरों के कहता था कलेजा मुंह को आता है,
कि हमको छोड़कर शेरे खुदा का लाल जाता है,